अलम तौरा फिर अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिखाई हैं कि तुमने देखा नहीं ला रब्बी का, अपने रब की तरफ, नहीं अपने रब की तरफ मतलब क्या, अपने रब की निशानियों की तरफ तुमने देखा नहीं। कैफा मद्द दिल, कैसे वो लंबा करता है, फैलाता है कि इसको, साए को, साए को अल्लाह ताला कैसे फैलाता है। वलो शाह अला जालहु साकिना, अगर वो चाहता तो साया स्टिल होता और कभी भी ना बढ़ता ना घटता, लेकिन उसने साए को कैसे बनाया, गैर महसूस तरीके से वो बढ़ भी रहा होता है, जब सुबह होती है बढ़ता है, फिर उसके बाद सिमटना शुरू हो जाता है और सिमटते सिमटते फिर खत्म हो जाता है। अब जवाल के वक्त बिल्कुल सूरज जब ऊपर आ जाता है तो साया खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये क्या हमें समझाया, देखो कि कोई रब है जो साए को समेटता है, जो साए को लंबा करता है। सुम्मा जालना शम्स आलैहि दलीला, फिर बनाया हमने सूरज को इसके ऊपर निशानी, यानी सूरज होता है तो उसकी वजह से दलील है ना किस चीज की, के साया हो, इसको इसकी वजह से साया बनता है, सायों का ताल्लुक सूरज से, तो सूरज के साथ साथ साए भी घटते और बढ़ते हैं, गरूब के करीब फिर लंबा हो जाता है, फिर और सुबह निकलता है तब लंबा होता है, फिर घटता जाता है, फिर उसके बाद फिर लंबा होना शुरू हो जाता है, फिर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो कहीं साए सिमट रहे हैं, फैल रहे हैं, फिर सिमट जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, कुछ पता चलता है इसका? आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। इसी तरह इंसान की जिंदगी है, इसी साए की तरह, वो और करें ना, एक बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, पहले तो कोई साया नहीं होता ना, फिर वो पैदा होता है, फिर वो गैर महसूस तरीके से बढ़ता है, पता ही नहीं चलता, एक दिन जवान हो जाता है और फिर गैर महसूस तरीके से बुढ़ापे की तरफ चल देता है। हम जब बाज लोगों को कुछ अरसे बाद मिलते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं अरे इतने अरसे बाद उसको देखा तो इतना बूढ़ा हो गया, वो तो इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी एज उसके ऊपर आ गई। अच्छा उसको नहीं पता, कुछ अरसे बाद देखने वाले को पता चलता है जिसके पर इतनी एज आई। तो साए की तरह ये जिंदगी भी एक दिन फैल रही होती है और उसके बाद सिमटना शुरू हो जाती है। जब फैल रही होती है ना, आप फैलते फैलते सोचते हैं कि पलती फैलती ही रहेगी, लेकिन वो जवानी एक दिन घटना शुरू हो जाती है, बुढ़ापा आना शुरू होता है, बेबस होने शुरू हो जाता है, और इस सिलसिला चलता रहता है, फिर एक दिन खत्म हो जाता है, जैसे दिन खत्म हो जाता है, इसी तरह कोई आता है और रूह लेके चला जाता है। कभी साए भी रुकते नहीं। अल्लाह हू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से लज्जतों को तोड़ने वाली का जिक्र किया करो। कौन सी चीज है जो लज्जतों को तोड़ती है, जो ख्वाहिशात को दबाती है, जो इंसान को आउट होने से रोकती है, आउट हो जाते हैं ना हम, कौन सी चीज है जो आउट होने से रोकती है? मौत। मौत का जिक्र को मनहूस ना समझा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कसरत से इसका जिक्र किया करो। हम तो तभी करते हैं जब कोई मर जाता है, तभी यकीन जाने, उसके अलावा अगर कभी डर लगता है कभी इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि लोगों के सामने करें तो कहते हैं लो जी ये तो डिप्रेस कर रहे हैं हम, तो इसलिए ऐसा दर्द सिर्फ ऐसी जगह पे ही दिया जा सकता है। कहीं गलती से अगर आप कहीं दूसरी जगह पे ऐसा दर्द दे दें तो फिर देखें, कोई भी ये जिक्र नहीं सुनना चाहता। कसरत से याद करना क्या, हम तो याद ही नहीं करना चाहते, बल्कि जब कोई मर भी जाता है तो वहां पे भी देखा जाता है लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और वो कारोबार की बातें कर रहे हैं, और वो जमीनों की बातें कर रहे हैं, घरों की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हैं, उस वक्त भी अपनी मौत नहीं याद आती। वो याद करा दे तो कहते हैं डिप्रेस ना करो, मायूसी की बातें ना करो, क्योंकि लज्जतों को तोड़ना नहीं चाहते ना, असल प्रॉब्लम हमारा ये, हम लज्जतों में रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा दिल खराब हो, हमारी मजा खत्म हो, टेस्ट में कोई फर्क आ जाए। तो इंसान को जगाया गया है कि देखो इन सायों से ही सीख लो, यहाँ ख्वाहिशात में ही पड़े रहोगे। देखिए फिर अल्लाह ताला फरमाता है ना, सुम्मा कबत ना हु इलैना कब्जन यसीरा, फिर हम समेट लेते हैं सायों को अपनी तरफ, समेटना आसानी के साथ। अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे समेट लेता है, इस तरह इंसानों को भी समेट लेता है। तो अब आपकी होमवर्क है, जरा कभी देखिएगा सायों का बढ़ना घटना, सुबह को देखिएगा फिर 10 बजे तक, फिर उसके बाद 11, फिर 12, कैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, शाम को कैसे हो रहा है, कैसे खत्म हो जाता है, फिर सोचिएगा जिंदगी को उसके मुताबिक। वहो लदी जाला लकुम लैला लिबासा, और वो ही है जिसने रात को लिबास बनाया। लिबास कैसे कि ढक लेती है, रात जो इंसान को ढांप देती है ना, हर चीज को ढांप देती है, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि नजर आने वाली हो, सब चीज अंधेरे में छुप जाती है। वह नौमा सुबह था, और नींद को आराम का बाइस बनाया। ना सिर्फ इंसान, चिरिंद परिंद जानवर सब खामोश हो जाते हैं। आप नहीं रात को देखेंगे चिड़ियां बोल रही हैं, दिन चढ़ने लगे तो तब बोलती, सब आराम करने लगते हैं, सब अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं। वजाल नहारा नुशूरा, और बनाया दिन को जी उठने का वक्त। जी उठना नशर होता है ना, फैल जाना, तो यानी फैल जाते हैं इंसान हर तरफ, काम काज ये शुरू हो जाता है। आप बाहर जाके काम नहीं करते तो घर में आप काम कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दिन एक्टिविटी का नाम है और रात आराम का नाम है। रात के बाद नींद को अल्लाह ताला ने पैदा किया, नींद भी अल्लाह की एक मखलूक है जो इंसान को आराम देने के लिए अल्लाह ताला इंसान के ऊपर तारी कर देता है। सुभान अल्लाह, वो खुद नींद से और ऊंघ से पाक है, लेकिन क्योंकि उसको आराम की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान है ना वो कमजोर है, तो उसके लिए नींद रखी। अब वो पता है नींद कितनी बाई से सुकून चीज है कि सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसी चीजों से बचाए। लेकिन जब किसी को डिप्रेशन या ऐसी एंजाइटी या बहुत गम होता है तो उसको नींद की गोलियां दे देते हैं कि सो जाए, क्योंकि तो उसके दिमाग को सुकून उससे मिल जाता है। तो ये कितनी सुकून का बायस है, जो रात को हम सोते हैं, सोचिए अगर अल्लाह ताला लाइट्स ऑफ ना करे, और हर एक का अपना एक टाइम हो, किसी का टाइम उस वक्त है तो देखिए आपको बेल कर रहा है, किसी वक्त फोन आ रहा है, रात को सबको पता है कि सब सो रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक टाइम रख दिया, सुभान अल्लाह, और इतना बड़ा इंतजाम फरमाया कि रात को तारी कर दिया। आप देखिए लिबास बनाया उसको, आप कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं हिलजुल, कहीं पता चलता है कोई आवाज कोई कुछ हो, लेकिन कैसे रात आती है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, गैर महसूस तरीके से, ना कोई शोर हंगामा, ना कोई शोर शराबा, ना कोई हटो बच्चो, ना कोई कुछ भी नहीं, कितने सुकून से आ रही है रात और फिर चली जा रही, और रात आ रही है और साथ ही नींद आ रही है। देखिए ना, अब हमारी बॉडी का भी क्लॉक उसके मुताबिक बन जाता है, इसीलिए जब हम कहीं और जाते हैं तो हमें जेट लैग होता है, क्योंकि रात आती है तो साथ ही हमारा नींद का टाइम शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला नींद तारी कर देता है। सुभान अल्लाह, तो रात को दिन ना बनाए और दिन को रात ना बना ले, कि आप दिन में सोएं, दिन को अल्लाह ताला ने बनाया नशूर, रात को अल्लाह ताला ने बनाया है लिबास, और उसमें नौम रखी है। लिहाजा इसलिए जब हम इस साइकिल को उलट कर देते हैं तो हम अपनी सेहत भी खराब करते हैं, और अल्लाह ताला के निजाम के अंदर भी एक आप जब चेंज लाएंगे ना, तो वो किसी लिहाज से भी सही नहीं होता। और तो ये रात, हर रात का आना और हर सुबह का आना इंसान को क्या सबक देता है, कि जो रात का आना और जो इंसान का सोना है ना, ये मौत है, और जो उसका उठना सुबह को है ये जिंदगी है। तो ये तुम्हें बताती है, क्योंकि कहते हैं ना नींद मौत की बहन है, तो वाकई सही है, आधी मौत है, यानी जब रात आती है और इंसान सो जाता है तो समझ लो कि मौत के मुंह में चला गया। इसीलिए जब सुबह को उठता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अदना, ये मसनून दुआ है सो के उठने की, ये शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें जिंदगी दी मौत के बाद। तो यानी हम मर चुके थे, नींद भी मौत की बहन है, और उसने हमें जिंदगी, तो जैसे तुम रोजाना रात को सोते और सुबह को उठते हो ना, इसी तरह इस दुनिया से जब जाओगे मौत आएगी, तो उसके बाद दोबारा जी उठना। अल्लाह ताला तुम्हें इस वक्त, अब नींद भी क्या है, लाशौरी की कैफियत, इंसान का शऊर खत्म हो जाता है, मौत भी इसी तरह। तो जैसे दिन में उठाया, इसी तरह हशर के मैदान में उठा देगा। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैना यदै रहमते, और वो अल्लाह वो जात है जिसने भेजा हवाओं को खुशखबरी देकर आगे आगे अपनी रहमत की। यानी बारिश को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रहमत। रहमत से पहले अल्लाह ताला ने हवाओं को भेजा, हवाओं को आगे आगे भेज दिया अपनी रहमत के, यानी बारिश के। वो आती हैं खुशखबरी सुनाती हैं बारिश की, ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी। वो जो रहमत है उसको कभी कभी हम तंग आ जाते हैं उससे और कहते हैं क्या मुसीबत, बारिश हो रही है, हालांकि अल्लाह की रहमत होती है। वअंजलना मिनस्समाई माअन तहूरा, और नाजिल किया हमने आसमान से पानी पाक और पाक करने वाला। तहूर कौन है, जो पाक खुद भी हो और जो पाक करता हो। इससे हमें पता चलता है कि जो बारिश का पानी है वो तहूर है, उसे आप वुजू भी कर सकते हैं, उसे आप पाकी हासिल कर सकते हैं, वो पाक करने वाला है। लिनुहयी बिही बल्दतन मैता, ताकि हम जिंदा करें इसके साथ मुर्दा शहर को। वनुस्कियहू मिम्मा खलकना अनआमन, और हम पे सैराब करें, पिलाएं इससे उनको जिनको हमने पैदा किया, मवेशी जानवर, मवेशी जानवरों के लिए भी अल्लाह ताला इंतजाम करता है उनको सैराब करने का। वह अनासिया कैथीरा, और इंसानों को, बहुत सारे इंसानों को, उनके लिए अल्लाह ताला ये बारिश बरसाता है, ताकि जमीन जो मुर्दा थी वो भी लहलहाने लगे, चरिंद परिंद और ये जानवर ये भी सैराब हो जाए, इनको भी पानी मिल जाए, और बहुत सारे इंसानों को भी। आप देखें अल्लाह ताला जो बारिश नाजिल फरमाता है वो भी उसकी एक कुदरत की भी बहुत बड़ी निशानी है, और उसकी रहमत भी है, अल्लाह ताला ने खुद उसको रहमत फरमा दिया। इस बारिश के ना बरसने पर क्या हो सकता है, अंदाजा कीजिए, क्योंकि ये वो नेमते हैं जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं, तो हम इनकी कदर नहीं पहचानते। अगर बारिश ना हो तो क्या हो, जमीन बंजर हो जाए, कहत साली हो जाए, फसलें ना उगे, लाइफ मुमकिन ना रहे। तो इंसान के लिए बारिश बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए इसको ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए कि क्यों बारिश हो गई है, बारिश हो रही है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद सर्रफनाहु बैनहुम लियद्दक्करू, हम इसको फेर के लाते हैं उनके दरमियान ताकि वो कुछ सबक हासिल करें, नसीहत हासिल करें। यानी हवाएं आ रही हैं, कभी मशरिक से चल रही है, कभी मगरिब की तरफ से चल रही हैं, कभी बारिशें आ रही हैं, कभी एक मौसम में आ रही है, कभी दूसरे मौसम में आ रही है, कभी बहुत गर्मी में आती है, कभी ठंड में आती है, कभी खजा और कभी बहार में आती है। आप देखिए अल्लाह ताला फरमाते फेर के हम लाते हैं, कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ताकि इंसान कुछ सबक ले। फअबा, तो इनकार किया किसने, अक्सर उन्नास, अक्सर लोगों ने, इल्ला कुफूरा, सिवाय नाशुक्री के। इन नेमतों को माना नहीं, इन नेमतों से नसीहत नहीं हासिल की, इन नेमतों की शुक्र गुजारी नहीं की, बल्कि सख्त नाशुक्री, सख्त नाशुक्री। क्या हम तो कहीं नाशुक्री नहीं करते? दूसरे लोग तो जाहिर है अल्लाह को पहचानते ही नहीं, तो उनके लिए ये सब चीजें वो अल्लाह ताला की तरफ कनेक्ट ही नहीं करते कि अल्लाह ने बारिश बरसाई, अल्लाह ताला ने ये सब्जा कर दिया, अल्लाह ने हरियाली कर दी, अल्लाह ने हमें पानी दे दिया, अल्लाह ताला ने मौसम बदल दिया, अल्लाह ने ये हवाएं भेजी, वो इससे कनेक्ट नहीं करते। बाज तो अपने मुसलमानों में ही आप कहने लगे हैं, और ये कहना सही नहीं है, कुदरत का शाहकार है, कुदरत का कमाल है। कुदरत क्या है, आप अल्लाह क्यों नहीं कहते, कुदरत नहीं कहे, क्योंकि एक अकीदा ये भी है कि कुदरत, मदर नेचर, वो उसको भी खुदा बनाया, ये नेचर, मदर नेचर ने ये कर दिया, मदर नेचर ने वो कर दिया, कुदरत ने ये कर दिया। एक मुसलमान को कहना चाहिए अल्लाह ने, क्या चीज है जो उसको रोकती है अल्लाह का नाम लेने से, क्या बात है कि अल्लाह का नाम लेने पे इतनी मुश्किल है। कुदरत उन पे मेहरबान हो गई। व्हाट इज दिस? कहीं इस वजह से हम शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। कोई प्रॉब्लम होता है कहने में अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, अल्लाह की रहमत है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अल्लाह ताला का नाम लेना इतना मुश्किल है क्या? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो तो उसका नाम लेता नहीं थकता। इनको इतनी मुश्किल हो जाती है कि अल्लाह के नाम की जगह भी कुदरत कहना शुरू हो जाए, हालांकि ईमान अल्लाह पे है। वाहे कुदरत, वाहे मदर नेचर। तो अक्सर नाशुक्र है, ये भी नाशुक्री है कि अल्लाह ताला का कमाल ना मानना, मानना ही ना कि ये अल्लाह ताला ने किया है। उसकी शुक्र गुजारी तो बात की बात आती है, उससे एसोसिएट ही ना करना और अल्लाह ताला का इनकार करना, वो भी नाशुक्री है कि सब कुछ उसने दिया, बारिश बरसा रहा है, वो हरियाली कर रहा है, तुम्हें पानी पिला रहा है, तुम्हारे मवेशियों को पानी पिला रहा है, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं, तुम मानते ही नहीं उसको, वो भी नाशुक्री है। वो तो कुफर बहुत बड़ा ही है। और भी नाशुक्रियां होती हैं जिस वक्त के हम, जैसे मैंने आपको एक ये बात बताई कि हमने कुदरत कह के बिल्कुल ही अल्लाह ताला के नाम को ही वहां से हटा दिया। एक और चीज है, जब हम एतराजात करते हैं मौसम के ऊपर, तो वो भी एक नाशुक्रिया। हाय इतना क्या बे टाइम बारिश शुरू हो गई, क्या बारिश ने तो हमारा सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। ये कैसी बारिश है जो चली हुई है, और ये कैसी गर्मी है, इतनी गर्मी इतनी, ये कैसा मौसम है, ये क्यों इतनी सर्दी हो गई। एक ये कहना कि हाँ आज बहुत गर्मी है और गर्मी के मुताबिक, या आज बहुत सर्दी है आप उसके मुताबिक स्वेटर पहने, या उसके मुताबिक आप इंतजाम करके जाएं, या वैसे एक डिस्कस करना वो एक अलग होती। एक शिकायती रवैया जो होता है ना, यहाँ ये देखो जरा इतनी गर्मी, पता नहीं क्या हो गया मौसम को, तो पता नहीं क्या, ये क्यों हम एतराज करते? क्या ये जमीन अल्लाह की नहीं? क्या ये मौसम अल्लाह के पैदा करदा नहीं? उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे, मेरा घर हो, मैं अपनी उसमें जो मर्जी ये चीज उठाऊं, वहां रख दूं, वहां से उठाऊं, कोई आगे मुझे कहे आपने क्यों ये किया, आप क्यों ये उठा के रख रहे, तो कितनी बुरी बात लगेगी मुझे। इसी तरह अल्लाह ताला की ये कायनात है, वो जो मर्जी करे, हम मुझे और आपको क्या हक मिलता है कि हम इतराज करें क्यों ऐसा हो गया, ये मौसम क्यों ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, सर्दी क्यों आ गई, ये तो बेमौसमी है, ये तो ऐसे है, पता नहीं इतने एतराजा कि अगर हम देखें तो हमारी जुबान पे ज्यादातर मौसम के बारे में शिकवे शिकायतें ही होती। इतना ग्लूमी हो गया, आए इतना ये ऐसे हो गया, क्यों? हर रोज हम देखें कि हम मौसम पर कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करते हैं, और नोट करें कितनी दफा शुक्र गुजारी होती है। हाँ शायद बहुत दिन बाद, गर्मी के बाद अगर बारिश हो जाए तो कोई शुक्र अदा करते हैं, वरना नहीं। ना अक्सर आप देखिए हम ना शुक्री के कलिमात ही मुंह से निकाल रहे, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा होता जो भी वेदर है, ना गवारी होती है, ना गवारी से बोल रहे होते हाय इतनी गर्मी, हाय ये, इस तरह से कभी भी शुक्र गुजारी नहीं आती मुंह पे, शिकवे ही शिकवे। मौसम पे भी शिकवे शिकायतें हमारी बंद नहीं होती, बहुत कम, हम आप नोट करें बहुत कम है जो हम मौसम पे शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने यही फरमाया था, अबा उनके लिए तो ये फेर फेर के लाई जाती हैं निशानियां कि वो शुक्र गुजारी करें, नसीहत पकड़े इससे, अल्लाह ताला के कुदरतों को देखें, लेकिन वो क्या करते, फअबा, तो इनकार किया। अक्सरियत यानी बहुत ही कम है जो शुक्र करते हैं, अक्सरियत इनकार करने वाली होती है, नाशुक्री करने वाली होती है। तो हम भी इस अक्सरियत में है या अकलियत में है? देखना चाहिए, अगर जुबान पे हर बार शिकायतें ही शिकायतें भरी पड़ी तो फिर तो इसी अक्सरियत में शामिल हो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला सारे साल एक ही जैसा मौसम रखता, जरा भी चेंज ना होता, तब क्या होता, लेकिन अल्लाह ताला फेर फेर के लाता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी खिजा है, कभी बारिश है, कभी खुश्की है, कभी स्नो है, कभी कड़ाके की गर्मी है, तो ये उसकी सब निशानियां हैं, और वो जो चाहे करे फ़ालु लिमा युरीद, कोई उसको मशवरा देने की जरूरत नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। आज हम चाहते हैं धोबी कहे कि आज बारिश ना हो, मेरे कपड़े सूखेंगे कैसे। किसान कहता है कि बारिश हो जाए, मेरी फसल पके। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहे करे, हमारी मर्जियों से तो नहीं चलता। और मौसम में भी हम चाहते हैं हमारी ही मर्जी है। हम नहीं आज चाहते कि बारिश हो तो ना हो बारिश। वलो शिना लबाथ ना फी कुल्ली करियत नजीरा, अगर हम चाहते तो हम हर बस्ती में एक नजीर बना देते, हर बस्ती में एक रसूल भेज देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके बाद कोई और रसूल ना आने वाला है, ना आपके साथ में पैरेलल में कोई और रसूल चल रहा था। जबकि बाकी टाइम पे ऐसा होता रहा है कि आप देखें, एक रसूल एक बस्ती में होता था तो साथ ही, जैसे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम है तो दोनों ही एक ही जगह में थे, ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी होता था एक बस्ती में, साथ वाली बस्ती में कोई और रसूल है, उसके साथ वाली बस्ती में कोई और रसूल है, इस तरह भी होते थे। बनी इसराइल एक एक दिन में कई रसूलों को कत्ल कर देते, तो एक से ज्यादा रसूल होते थे। अल्लाह ताला चाहता तो इसी तरह भी कर देता। अब ये ना कोई इतराज करना शुरू हो जाए, क्यों नहीं किया फिर, अल्लाह की मर्जी। तो कोई डराने वाला यानी वार्निंग देने वाला यानी पैगंबर अल्लाह ताला चाहता तो भेज देता। फला तो तेल काफिरीन, तो आप ना पैरवी करें काफरों की, यानी आप इनके प्रेशर में नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फॉलो तो नहीं करना था, लेकिन वो आपको प्रेशराइज ना कर पाए। वजाहिद हुम भी जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद करें। इसके जरिए किसके ही के जमीर किस तरफ जा रही है? कुरान की तरफ। इस कुरान के जरिए जिहाद बड़ा, आप देखें कि जिहाद क्या होता है। जिहाद का पहले तो मतलब समझने, इसलिए क्योंकि ये ऐसा वर्ड है सबसे ज्यादा मजलूम वर्ड है, इसलिए कि इसकी सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन की गई। काफरों ने तो की, लेकिन मुसलमानों को भी चूंकि पता ही नहीं अपने दीन का, इसलिए वो भी सोचने लगे कि पता नहीं ये कोई बुरी चीज है, कोई बहुत ही बुरी चीज है, इसका तो नाम भी नहीं लेना, और ये तो ऐसी चीज है कि बस कहो कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है इस्लाम के अंदर। हालांकि ये नहीं है। जिहाद का मतलब असल में क्या होता है? अटमोस्ट स्ट्रगल, अंथक मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करना। और इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा उसके अंदर अपने आप को खपा देना, अपने सारे रिसोर्सेस उसमें इस्तेमाल कर देना, यानी एग्जर्ट योर सेल्फ जिसको कहते हैं ना, एग्जर्ट कर दे अपने आप, पूरी एफर्ट अपनी लगाए, ठीक है, ये होता है जिहाद। अब यहां पे कहा गया जिहादन कबीरा, जैसे मिशन बड़ा है तो जिहाद भी बड़ा ही होना चाहिए। पहले तो जिहाद के वर्ड में ही है कि एग्जर्ट करें अपने आप को, और अब और भी आ गया कि बड़ा जिहाद करें, यानी पूरी अपनी सलाहियतें लगा दें, हर एक तरीका यूज करें, हर तरह से कोशिश करें, भी ही इसके जरिए, इस कुरान के जरिए। यानी इस कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी पूरी लाइफ में आगे पहुंचाने की कोशिश की। और आपको पता है ये मक्की सूरत है, मक्का में तो किताल नहीं था। किताल जो है वो जिहाद की एक फॉर्म है, लेकिन पूरे जिहाद को समझ लेना कि वो किताल ही है, लड़ना ही है, ऐसा नहीं है। बल्कि जिहाद तो ये चीज है ना कि आप अल्लाह के रास्ते पर जब चलते हैं तो इस रास्ते में जो भी रुकावट आए उस रुकावट की परवाह नहीं करनी। कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती या तलवार लेके खड़ा हो जाए तो उससे भी लड़ जाओ, लेकिन ये अल्टीमेट चीज है, ये एक बिल्कुल एंड की चीज है। उससे पहले पहले तो अपना नफ्स ही खड़ा हो जाता है, जैसे ख्वाहिशाते नफ्स हैं, अभी बात हुई कि ख्वाहिशाते नफ्स ही इंसान की उसको आगे नहीं बढ़ने देती, और उसको कहती है कि मुझे तो ये चाहिए, मेरा तो ये शौक है, मेरी तो ये मर्जी। उस वक्त इसके साथ पहले जिहाद होता है। आप इसके साथ पहले स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, मेहनत करें कि इसको कंट्रोल करें। उसके बाद आप देखिए अल्लाह के रास्ते पे जब चलने लगते हैं तो काफरों ने तो बाद में खैर रोकना, वो तो बाद की बात होती है। अपने घर वाले कौन से बख्शते हैं? अपने शोहर, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने ससुराली सभी पीछे पड़ जाते हैं। उस वक्त डट जाना, उस वक्त अल्लाह के हुक्म के ऊपर जमे रहना, ये जिहाद है, ये जिहाद आपने कोई अल्लाह का हुक्म मानना शुरू कर क्या दिया, सबको एक मुश्किल पड़ जाती है। मगर जब आप कहते ना कि किसी की बात भी टूटे तो टूटे, रब का हुक्म ना टूटे, तो ये जिहाद है। ओके, ये आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, अपने आप को उस पे रखने के लिए, दीन पे चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती, कोई आसान रास्ता थोड़ी है। तो उस जमाने में काफिर मुसलमानों की मुखालफत में खड़े हो गए थे, उनको नहीं इस रास्ते पे चलने दे रहे थे, तलवारें निकाल ली थी तो उनके साथ लड़ रहे थे, तो ये भी जिहाद है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसको इतना मिस यूज किया गया। ये तो पूरी जिंदगी को इनसर्कल करती है, पूरी जिंदगी के ऊपर मुहित है, शुरू से लेके नफ से लेकर और एंड तक जो भी इस रास्ते में आ जाए उसके साथ एफर्ट करना कि मैं चलूं अल्लाह के रास्ते पर, वो जिहाद है। इसी तरह जिहाद बुराइयों के खिलाफ भी जिहाद है, आप उसमें भी स्ट्रगल करते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे लाने के लिए है, दूसरों को भी लेकर आए। अमर बिल मारू व नहीं अनिल मुनकर भी जिहाद है। आप ड्रग्स के खिलाफ खड़े होते हैं, ये भी एक जिहाद है। आप वहाशी और जिना और इनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये भी एक जिहाद है। आप ये LGBT के खिलाफ आप बात करते हैं, ये भी एक जिहाद है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बयान करना ये अफजल जिहाद है। यानी आज के अगर हालात में वो ही लोग छा गए हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं और आपको डर है कि आए अल्लाह हमारे ऊपर ना कुछ, कोई हमारी जॉब से ना निकाल दें, कुछ ये ना कर दें, तो इसलिए हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कलमाए हक बुलंद करते हैं कि ये गलत है ये काम, तो ये जिहाद है। ठीक है, तो ये इसी तरह माशरे की फरसूदा बेकार रस्म और रिवाज जो है इनके खिलाफ खड़े होना कोई आसान काम है? आप यही कह दें किसी जगह पे कि ये किसी शादी के ऊपर आप कह देंगे यहाँ पे ये मिक्स्ड गैदरिंग नहीं होगी, या यहाँ पे ये नाच गाना ये औरतें ये इस तरह से नहीं करेंगी, मर्दों के सामने नाच रही हैं और एक कॉन्सर्ट बनाया हुआ और ये नहीं होगा, आप देखें फिर क्या होता है। तो ये जिहाद है, फिर इसके खिलाफ खड़े होना या एक एक्शन लेना या एक स्टेप उठाना ये जिहाद है। इसकी परवाह ना करना कि इसके बाद रिजल्ट क्या होगा और इंसान टकरा जाए अपने माशरे से या अपने रिश्तेदारों से या अपने घर वालों से या किसी से भी, जो भी रुकावट बने, तो ये जिहाद है सब। तो जरूरत तो इस बात की है कि हम ये जब कहते हैं ना, तो ये हमारे सिर्फ बोल ना हो कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी तो नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे रब्बुल आलमीन के लिए, ये सिर्फ बातें ना हो, ये कि सिर्फ नारा नहीं है कोई, ये वाकई होना चाहिए कि वाकई हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए हो। और इसका मतलब आप ये नहीं, इसका मतलब होगा कि आप खड़े हो जाए आज ही तलवार लेके भी सारों को मारना शुरू हो, तो मक्का में तो था ही नहीं इस तरह का, तो फिर ये मक्की सूरत के अंदर क्यों जिहाद की बात है? इसका मतलब जिहाद का हमने गलत कॉन्सेप्ट लिया हुआ ना, कि सिर्फ तलवार को समझे, एक लोगों ने समझ लिया, एक एक्सट्रीम पे निकल गए, उन्होंने कहा बस नफ्स से जिहाद है और कोई जिहाद है ही नहीं। दूसरों दूसरी एक्सट्रीम पे निकल गए, उन्होंने कहा कि बस उठ जाओ और तलवारें लेके खड़े हो जाओ और काफिरों से लड़ो, बस ये जिहाद। दोनों ही गलत है, जिहाद पूरी जिंदगी की एक स्ट्रगल का नाम है, ये सब स्ट्रगल्स हैं हमारे। और अब तो हम अभी तो अपने घर से भी नहीं निकले होते, हमें तो यहीं पे पहले जिहाद करना पड़ जाता। तो और कहा गया जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद, यानी पूरी जिंदगी ये मेहनत करनी है, पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल करनी है, हर तरीका अपनाना है जिससे आप काफरों का साथ चाहे लड़ना पड़े, चाहे अपने मुआशरे के अंदर स्टेप उठाना पड़े, चाहे, लेकिन हर तरीके के साथ अपने आप को अल्लाह के दीन के ऊपर लेकर आए, और भी ही इस कुरान के जरिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन यही था कि आपने इस कुरान को लोगों तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात कही जा रही होती है ना कुरान में, तो वो पूरी उम्मत उसमें शामिल होती है, अनलेस के वहां पे कुछ खास ऐसी इंडिकेशन हो कि सबके लिए ये हुक्म नहीं है, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये जो बात है ये सारी उम्मत को कही जा रही है, इस कुरान के जरिए जिहाद करो, यानी इस कुरान को लेकर आगे पहुंचाओ, इसकी कोशिशें करो, इसके लिए हर एफर्ट लगा दो, जिहादन कबीरा करो, छोटा मोटा भी नहीं, बस जिहाद भी नहीं, कबीरा बहुत बड़ा, यानी हर तरह, हर तरीका, हर रिसोर्स इस्तेमाल कर लो, माल लगाना है, बोल के करना है, कलम यूज करना है, किस तरह से भी हो, मगर लोगों तक पहुंचाओ। इस कुरान के जरिए जिहाद करो, बी ही एक ही जमीर देखे। अब देखिए आपके सामने साफ लिखा है, वरना आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि आप क्या से जिहाद करेंगे इस कुरान से, क्या एफर्ट करेंगे इसके साथ? खुद तो पहले समझेंगे, इसको आगे भी फैलाने के लिए कोशिश करेंगे। कोई खुद नहीं फैला सकता तो आगे पैगाम ही पहुंचा दे। और माशाल्लाह अब हमारी ऐसी टीम्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए कि वो जगह जगह जाते हैं और जिहाद कर रहे हैं इस कुरान के साथ, अल्लाह के पैगाम की दावत दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं अल्लाह के कुरान की तरफ। वो काम जो पैगंबर अलैहिस्सलाम का था, वो ही काम आगे करने की कोशिश में लगे हुए। एक जर्रे के बराबर भी कोशिश हो तो तब भी अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा सकता है, कितना ही बड़ा कर दे, ये उसकी शान है, वो उसकी मर्जी है। हम उतनी हद तक तो नहीं कर सकते, लेकिन मिशन वही है कि इस कुरान को आगे पहुंचाए। उसके लिए खड़े हो रहे हैं, रातों को खड़े हो रहे हैं, यहाँ बूथ लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, मस्जिदों में लगा रहे हैं, स्टोर्स पे लगा रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पैगाम को पहुंचाने में अपनी कोशिश लगाई हुई। इस कोशिश को और तेज कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिहादन कबीरा की जरूरत है, बड़े जिहाद की। ये छोटी थोड़ी बात से ये नहीं होगा, इस उम्मत को खड़े होना है इस पैगाम को लेकर। ये उम्मत नहीं खड़ी होगी तो और कौन करेगा ये काम? फरिश्ते करेंगे या काफरों से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो करें? कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है। हर तरीके से इस किताब को सब तक पहुंचाना है। अब उसमें आप अपने मुआविनीन शामिल करें, लोग जिससे भी हेल्प ले सकते हैं वो करें, नेट के थ्रू कर सकते हैं करें, प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं करें, मगर करें इस काम को। कोई पीछे ना बैठे, कोई ये ना कहे मुझे आता नहीं, नहीं, सबको हुक्म है, सबको पहुंचाना है। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं इतना होगा तो कम से कम यही पैगाम पहुंचा दे कि आ जाओ इस कुरान को सीखने की, इसकी दावत दे, इसके साथ किसी और को अटैच कर दे। आपको बोलना नहीं आता, नॉलेज नहीं है, लेकिन बुलाना तो आ सकता है ना, तो अपनी आवाज मिला दे उनकी आवाजों के साथ जो सब बुला रहे हैं अल्लाह की तरफ। तो ये एक वाजी आयत है कि कुराने पाक की तरफ बुलाने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। इसके साथ जिहाद करो, इसको जिहाद करार दिया। ये आप अल्लाह के रास्ते में होते हैं जब भी आप ये काम जितनी देर भी करते रहते हैं, आप अल्लाह के रास्ते में। और जो अल्लाह के रास्ते में चल खड़ा हुआ वो फिर अल्लाह के जिम्मे, उसको मौत भी आती है अल्लाह के रास्ते के अंदर है तो फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद है वो। तो जो अल्लाह के रास्ते में चल पड़ा फिर उसका अजर सोचे कितना, हर कदम पे अजर मिलेगा, हर पैसा खर्चने पे अजर मिलेगा। आप किसी कंपनी के थ्रू ही उनके काम के लिए निकलते हैं तो आपका जिम्मेदारी लेते हैं, आपके खाने की, पीने की, होटल की, गाड़ी की, सबकी आप वो पे करते हैं उसका। आप क्या सोचते हैं अल्लाह के रास्ते में जो निकलेगा तो अल्लाह ताला नहीं उसको देगा, अल्लाह नहीं उसको नवाजेगा? अगर इंसान छोटे मोटे कारोबार में इस तरह से करते हैं तो अल्लाह ताला की शान तो बहुत बुलंद है। जब से आप अपने घर से निकल खड़े होते हैं अल्लाह के रास्ते में इस कुरान की तरफ दावत देने के लिए, तब तक आप अजर ही अजर समेट रहे होते। तो वह जाहिद हूं और जिहाद करो इनके साथ। अब काफरों के साथ किसी ने क्या किया था वहां पे मक्का में? जिहाद किया था तलवार के साथ? एक दिन भी तलवार किसी ने नहीं निकाली, लेकिन फिर किससे? भी ही इस कुरान के जरिए इस कुरान को आगे पहुंचा। जिहादन कबीरा, हालांकि वो कैसा माशरा था, कुफर ही कुफर था हर तरफ, वहां पे कितना मुश्किल था इसके साथ जिहाद करना, लेकिन किया ना उन लोगों ने। तो कभी ये ना सोचे कि इस माशरे में कौन सुनेगा, इसमें कौन क्या कहेगा। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह गैर मुस्लिमों तक भी लेकर जाना। जब एक दफा ट्रेन हो जाए हम कि मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो जाए, इसके अंदर हम अपनी एक सलाहियत, एक अपने अंदर एक स्किल पैदा कर लें, तो फिर आगे हम इससे बढ़ के काम करें। हमने इस पैगाम को लेके आगे बढ़ते ही जाना है, सारी जिंदगी का ये एक मिशन बना लें कि मैंने इसके साथ जिहाद करना है, इस कुरान के साथ। वहुअल्लज़ी, और ये बीच में आप समझ रहे हैं जुमला मोतरेजा था, यानी एक बीच में बात आती है ना, और वो ही अल्लाह की निशानियां फिर से बताई जा रही हैं। वह अल्लज़ी मरा जल बहरैन। और देखें यही आयतें यही बातें बता बता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग भी की थी। काफरों के जो दिल पिघलते थे वो इस कुरान से पिघलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोई दर्श नहीं देते थे, कुरान सुना देते थे उनको, और उनको चूंकि समझ आता था तो उनको पर इतना असर होता था। तो हम इस उम्मत की काया अगर चाहते हैं कि पलट जाए, चाहते हैं अगर आपकी ये उम्मत इस जवाल से निकल जाए, अपना एक जर्रा एक कतरा इसमें डाल दें, एक छोटी सी एफर्ट इसमें डालें। हम सारी जिंदगी भी एफर्ट करेंगे वो छोटी ही है, हम इतनी नहीं कर सकते ना हमारी इतनी हिम्मत है, छोटी सी है एफर्ट। लेकिन आप देखें आपकी छोटी सी एफर्ट भी इस पूल में पड़ गई कि हम भी काउंट हो जाएं कि हम भी इस जिहाद में शरीक हुए। कितने बड़े मर्तबे, नबियों वाला मिशन है। तो कोई किसी का भी इसमें जो वक्त है वो जाया नहीं जाता, किसी की भी कोशिश जरा बराबर भी जो इस रास्ते में कोई देख लें। आगे हम बादलों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कोई हवाएं हैं। अब ये देख पीछे हमने ये बात की हवाओं की, कोई हवाएं हैं लेके बादलों को चलती हैं, बादल कहीं जाके बरसता है और मुर्दा जमीन जिंदा होती है। तो कोई हवाओं का काम देता है, कोई बादलों का काम देता है, कोई पानी है जो बरस रहा है। सब हमने सूरह नूर में पढ़ा था ना, सब भी बादल भी बरसते हैं तो सब हैंड इन हैंड जुड़ जाते हैं तो तब बरसते हैं। तो जुड़ना जरूरी है इसके अंदर, सब मिलके काम करें। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक भी कह दे मैं मेरा क्या फायदा, मैं तो बरसूंगा तो फिर ही पानी का कतरा बनूंगा तो कोई फायदा बनना क्या फायदा, हवाएं कहें हमारा क्या फायदा बनना, तो काम नहीं हो सकता। उनको अपना काम करना है, बादलों को अपना काम करना है, कतरों को अपना काम करना है, तब मुर्दा जमीन जिंदा होती है। और मुर्दा जमीन की बारिश की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में दी है, वही इलाही से कि वही इलाही है, वो भी बारिश है। ये कुरान बारिश है, ये दिलों पर पड़ती है तो दिल जो मुर्दा होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। तो इस मोटरसाइकिल का हिस्सा बन जाए, इसमें अपना ताउन डालें किसी तरह भी। वह लदी मारा जल बहरीन, और वो ही आजाद जिसने मिलाए दो समंदर। कैसे? हाद आजमन फुरात, ये है एक ऐसा जो कि अजब है, मीठा है, शीरी है। आप देखें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ये भी इतनी बड़ी कुदरत की निशानी है कि पानी एक खारा है और एक मीठा है। समंदरों के अंदर ही ऐसे चश्मे हैं जो मीठे पानी के हैं, और समंदर सारा खारी है, और अल्लाह ताला कैसे इनको एक दूसरे से अलग रखता है। आप एक ग्लास में भी पानी डालते हैं ना, छोटा सा ग्लास है, उसके अंदर भी जो पानी है वो अलग-अलग नहीं रहता, मिल जाता है। कहां ये कि एक समंदर है और उसके अंदर पानी अलग-अलग रहे। अज्ब मीठा और फुरात कहते हैं बहुत मीठे को, जैसे हम कह देते हैं ना ये शहद की तरह मीठा है, तो शहद की तरह कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मीठा कहना काफी है। इन शहद की तरह क्या है, उसको उसकी ताकीद के लिए, ठीक है। और दूसरा है वहादा मिल हूं उजाज, और एक नमकीन है और उजाज कड़वा खारी। तो दूसरा वर्ड जो है ना स्ट्रेस के लिए लाया गया, लेकिन एक और भी माना है फुरात, फराता से तोड़ देना, फरात 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 तोड़ देना। तोड़ देना मतलब क्या, ये प्यास को तोड़ देता है, क्योंकि बड़ी आसानी से निगला जाता है ना, गले के नीचे उतर जाता है मीठा जो होता है, लेकिन दूसरा कड़वा कसीला होता है, वो पिया ही नहीं जाता, गले से ही नहीं उतरता। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वह जाला बहना हुआ बरजखन और हिजरम महजूरा, हमने इनके दरमियान एक पर्दा कर दिया और एक बंद बांधा हुआ है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा एक तरफ ग्रीन है एक तरफ ब्लू है, इसने मुझे वीडियो भी भेजी थी इसकी, एक ग्रीन और एक ब्लू। सुभान अल्लाह, वो मिल रहे हैं लेकिन वाकई अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं जाके देखा था। ये भी आपकी हकानियत की दलील है इस कुरान के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ये देखी थी जगह, कि जाके ना आपने कभी सेलिंग की थी कि कभी समुद्रों के अंदर गए हो। तो अब जो सेलर्स बताते हैं कि हमें पता होता है कि कहाँ पे मीठे पानी के चश्मे हैं समुद्र के अंदर, फिर हम वहां पे पानी निकाल लेते हैं समुद्र से यूजेज के लिए, वो बाकी पानी तो आप पी ही नहीं सकते। और फिर कलर भी डिफरेंट, जायके डिफरेंट, और एक ही समंदर में। सुभान अल्लाह, तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है। जमीन के अंदर 70% समंदर है, पानी है, 30% जमीन में खुश्की है, और उसको खुश्की में झीलें हैं, दरियाएं हैं, नदी नाले हैं, और उनमें भी मीठा पानी है। वो जो 70% है वो भी आके नहीं इस पानी के ऊपर चढ़ जाता, कोई रुकावट इसमें भी है, ये भी एक माना है। अल्लाह हू अकबर। और फिर इसका एक और भी माना है कि जो ये जो जमीन है इसके अंदर आप देख लें, अंदर खोदते जाएं तो नमकीन है, कहीं दूसरी जगह खोदें तो पानी मीठा है। तो क्या मिल नहीं रहा, ये जमीन के अंदर को ही अल्लाह ताला ने आड़ लगाई हुई। अल्लाह हू अकबर। फिर आप इसकी और एक तफसीर देख लें कि दरिया जो है वो मीठे पानी का होता है, वो समंदर में जाके गिरता है तो लंबे फासले तक आपको पता है वो अपनी शनाख्त रखता है, अपना वजूद कायम रखता है, कई मील तक वहां से भी लोग पानी ले लेते हैं। अल्लाह हू अकबर। तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी ना, कौन ये कर सकता है? वो ये दलाइले तौहीद दिए जा रहे हैं, इनका दुनिया में किसी ने भी नहीं दावा किया। कोई आप देख लें, किसी से पूछ लें, जो भी खुदाई का दावा करते हैं अपने आगे लोगों को सज्दे करने के लिए कहते हैं, खुदा बने बैठे हैं, उनसे पूछे ये कौन करता है, वो भी नहीं कहेंगे कि मैंने किया। अल्लाह अकबर। तो वह अल्लज़ी खलक मिन अल्माई बशरन, और वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को, एक पानी का कतरा ही है जिससे इंसान को पैदा किया गया। फजालहु नसब व सहरा, और उसके बनाए रिश्ते नसब के भी और ससुराली भी। एक सहर का माना बेटियां किया गया है, और नसब का माना बेटे, बेटों से नसब चलता है, और सहर से आगे बेटियों की औलादें चलती हैं, दूसरों के खानदानों में जाती हैं, वहां पे उनके बच्चे पैदा करती हैं। लेकिन एक दूसरा माना जो ज्यादा लिया है मुफस्सिरीन ने, कि ये नसब के रिश्ते और ससुराली रिश्ते, यानी एक इंसान है और उस इंसान के आगे पहले तो उसके नसब के रिश्ते ही होते हैं, और उस वो भी कितने प्यारे रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए। अगर अल्लाह ताला सबको आदम अलैहिस्सलाम की तरह पैदा कर देता, अगर एक एक बंदा जमीन पे वैसे ही रख देता जैसे आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, उनके कोई चाचा फूफी मामू दादा दादी नाना नानी बहन भाई कोई भी नहीं, ना कोई माँ बाप है ना कुछ है, तो ऐसे भी कोई हो सकते थे सारे, फिर क्या होता, ये इतने प्यारे रिश्तों से इंसान महरूम हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये रिश्ते इंसान को दिए, और इन रिश्तों के अंदर एक मोहब्बत डाल दी, और फिर इन रिश्तों को इंसान एंजॉय करता है, इनमें एक बेतकल्लुफी होती है, और ये खून के रिश्ते बड़े अजीज होते हैं, और इन जैसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। फिर शादियां होती हैं, ससुराली रिश्ते जन्म लेते हैं एक ही खानदान से। देखें कभी कभी आप देखते हैं जैसे एक बूढ़े दादा दादी बैठे होते हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चे यानी बेटों के भी बच्चे, बेटियों के भी बच्चे, और फिर बहुत सारे बच्चे यानी 35-40 लोग हो जाते हैं। वो दो थे जिनसे शुरू हुआ, और किसी के 4-5 बच्चे हैं तो उनके आगे बच्चे हैं, तो कितना बड़ा खानदान बन जाता, किस तरह फैल जाते। तो ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए। फिर जब वो देखें कोई इंसान बड़ा होता है, फिर उसके शहर के रिश्ते शुरू होते हैं यानी ससुराली। उन ससुराली रिश्तों में क्या है, जो शादी के बाद के रिश्ते हैं, यानी शौहर के लिए बीवी का खानदान, औरत के लिए शौहर का खानदान, तो ये भी रिश्ते हैं, ये भी एक रिश्तेदारी है, ये भी अल्लाह ताला ने बनाए। इंसान के रिश्ते कितने फैल जाते हैं फिर। तो अल्लाह ताला ने एक ही पानी से इंसान को पैदा किया, उसी से लड़के बने, उसी से लड़कियां बने, और उस आगे उनके लिए रिश्ते बनाए। बाज दफा ज्यादातर नसबी रिश्ते मीठे लगते हैं, सेहरी रिश्ते कड़वे लगते हैं, हालांकि हैं दोनों ही रिश्ते, और दोनों ही जरूरत है, इसलिए कि मीठे पानी की भी जरूरत होती है, और ये जो मिलहुनु जाज है ना इसकी भी जरूरत होती है, इसके अपने फायदे हैं। अगर समंदर मिलहुनु जाज नहीं होता ना, तो उसमें सड़ांत पैदा हो जाती, वो नमकीन है, वो खारी है, उसमें अपना फायदा है, ठीक है। और इनमें ऐसे भी हैं जो गर्म और ठंडे भी होते हैं, और वो भी अलग अलग रहते हैं, जैसे सूरह रहमान में मरज अल बहरैन यल्तकियान, तो इस तरह रिश्ते भी हैं, कई कड़वे हैं कई मीठे हैं।
तो कड़वों की या कस जो खारी हैं उनके अपना फायदा है। अगर अल्लाह ताला ने ये इंसान की जरूरत बनाए, अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान की ताल्लुकदारियां हो, उसके रिश्ते हों इस जमीन में। इमेजिन करें कोई ऐसा इंसान जो जैसे कि कोई जिसको पता नहीं होता अपने रिश्ते का, कहीं पैदा हुआ किसी ने लेके पाल लिया किसी यतीम खाने में या कुछ में, वो बच्चे इतने महरूम होते हैं कि अपने रिश्तों को ढूंढते हैं। उनकी सारी जिंदगी की तलाश यही होती है कि हमारे रिश्ते हमें मिल जाएं। कौन है हमारी माँ, कौन है हमारा बाप, कौन है हमारे रिश्तेदार, कौन है हमारे बहन भाई। तो ये अल्लाह की रहमत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत नहीं उतरती उस कौम पर जो रिश्ते काटते हैं। तो ये बार बार बात बात पे नाराजगियां, बात बात के ऊपर रूठना, बात बात के ऊपर गुस्सा करके कट ऑफ कर लेना और गिले शिकवे रखना और एक दूसरे के साथ हमेशा मुंह बसोरे रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं रिश्ते, इनकी भी कदर करनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, इसलिए हमें कोई कदर ही नहीं। ना कोई माँ बाप के रिश्ते की कदर करता है, ना कोई बहन भाइयों के रिश्ते की कदर करता है, ना वो आगे कोई किसी रिश्ते को हम कुछ समझते हैं। ये तो बड़ा आसान था, आप जंगलों के अंदर निकल जाते, सब कटके एक जगह जिंदगी गुजारते। इम्तिहान यही तो है कि हम इन रिश्तों को निभाते हुए कैसे जिंदगी गुजारें। इनको निभाना है हमने और इनके साथ ही चलना है, चाहे हमें कितने भी कड़वे लगते हैं, चाहे हमें कितने भी, बाज दफा बहन भाइयों के अंदर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो भी कड़वे लगने लगते हैं। तो चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे शादी के बाद के रिश्ते हों, सब रिश्ते हैं। अकान और रब्बुक कदीरा, और अल्लाह ताला है बड़ा कुदरत रखने वाला। रिश्ते उसने पैदा किए, उसकी कुदरत की निशानी। तो लिहाजा इन रिश्तों की कदर जाने। आप देख लें कि वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती अपने घरों में बैठी रहती हैं, मुतमन्ना करती हैं कि काश हमें हमारी शादियां हो जाए, हमें ये रिश्ते मिले। आप देख रहे हैं जानवरों में कोई रिश्तेदारियां नहीं होती, अकेले अकेले ही बेचारे फिरते रहते हैं। इंसान भी अगर ऐसे होते तो, मगर इंसानों को असल में ना समझ नहीं आती नेमतों की, किसी नेमतों की कदर उनके अंदर होती नहीं है। अक्सर कम ही होते हैं जो कोई रियलाइज करते हैं किसी नेमत को और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और उनको वो देखें जिनके कोई रिश्ते, चलो हैं भी तो करीब हैं ही नहीं, बहुत दूर है बिल्कुल, वो अकेले तने तनहा किसी मुल्क में रहते हैं, फिर रोते हैं अपने उन्हीं रिश्तों के लिए। वही आबुदूना मिन दूनी लाही माला यंफाउम वला यदुरुहुम, और वो इबादत करते हैं उनकी अल्लाह को छोड़ के, जो ना उनको नफा देते हैं ना उनको कोई नुकसान उनसे हटाने की कोई कुदरत रखते हैं, ना नुकसान देते ना नफा। बस दफा ये लोग इसलिए गैर अल्लाह की पूजा करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मैंने इसकी ना पूजा की तो ये मुझे नुकसान देगा, जैसे सांप वगैरह इन चीजों की इसलिए पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं इस इनके नुकसान से बचने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये उनकी पूजा करते हैं जिन जो इन नफा नुकसान की कोई कुदरत ही नहीं रखती। और जो काफिर है वो तो अल्लाह ताला के मुकाबले पर पीठ फेरने वाला है, यानी ये काफिर जो है वो हमेशा उस तरफ अपना जोर डालता है जो अल्लाह के खिलाफ वाली पार्टी होती है। इस दुनिया में याद रखें दो ही पार्टीज हैं, एक हिजबुल्ला और एक हिजबु शैतान। काफिर हमेशा हिजबु शैतान वाले ग्रुप के साथ होता है, वो चाहे अच्छा शैतान वाला जो ग्रुप है ना, इसमें इंसानी शैतान भी हैं और जिन्नों वाले शैतान भी होते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड ग्रुप इस दुनिया में है नहीं, ठीक है। जिन और इंस में ही शैतान होते हैं, वो इस तरफ जाते हैं। और काफिर की तो खसूसियत खास तौर पे ही है। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वो उस तरफ अपना जोर डालते हैं, उनकी खसलत ही है। इसीलिए तो हमें कहा गया कि उनकी मुशाबहत ना करो, सिर्फ पहनने ओढ़ने की बात नहीं, किरदार में भी उनकी मुशाबिहत ना हो, यानी आपके कैरेक्टर उनके जैसा ना हो, उनकी तरह की चीजें आप ना करें, तो उनका साथ देना तो दूर की बात, या उनके मुशाबा दूर की बात, उनके पलड़े में जोर डालना भी नहीं है। क्योंकि काफिर हमेशा उसकी जो एक्टिविटीज होंगी ना, वो अल्लाह ताला के खिलाफ वाले ग्रुप के साथ होंगी। और बाज दफा हम लोग भी खामोश रह के अपना वजन उस पलड़े में डाल देते हैं जो हिजबु शैतान है। ऐसी खामोशी भी गुनाह है, जिस खामोशी से आपका वजन दूसरे के पलड़े में जा रहा हो, वो खामोशी सही नहीं है। वैसे खामोशी बड़ी पसंदीदा, मगर ये खामोशी गुनाह है। हक बात कहने का वक्त है, कोई मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और आप जी खामोश बैठे हैं, आप तमाशा देख रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं अपने सामने ऐसी बेहयाई की बातें, ऐसी चीजें होती देख रहे हैं, आप भी उस मजलिस में बैठे हुए हंसते जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपने तो खाना खा के जाना है ना। आपके सामने है कि किसी के साथ ज्यादती की जा रही है, उसके हकूक मारे जा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। हमें क्या, हदीस में आता है अल्लाह ताला खास लोगों के गुनाहों की वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता, लेकिन जब लोग अपने सामने बुराई होती भी देखते हैं और वो कुदरत रखते हैं इस बात की, इतनी उनके अंदर ताकत है कि उसका इनकार करें, उसको बुरा कहें, मगर वो नहीं कहते, गूंगे शैतान बन जाते हैं। बुराई इनके सामने हो रही है, चुप करके बैठे, बाद में बातें बना लेंगे, लेकिन चुप करके बैठे, किसी को कुछ कहना ही नहीं। हम क्यों बैड बुक्स में आए किसी की, तो अपना वजन शैतान के ग्रो में डाल दिया। तो काफिर ऑलवेज सरगर्म है इसमें, मोमिन को चाहिए कभी खामोश रह के फिर अपना वजन उनके पलड़े में ना डाले। वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरा व नदीरा, हमने नहीं भेजा आपको मगर खुशखबरी देने वाला और वॉर्न करने वाला बना के। आपके दो ही काम, वो लोग जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ आने वाले हों उनको खुशखबरी देना, और जो अल्लाह के नाफरमान है उनको डरावे देना। आप जबर नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं है, लेकिन आपका काम है पहुंचा देना, उनको बता देना। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, कह दीजिए मैं तुमसे इसके बारे में कोई अजर नहीं मांगता, कोई फीस नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई मफाद नहीं चाहते, कोई कुर्सी नहीं चाहते, कोई हुकूमत नहीं चाहते, कोई वोट नहीं चाहते, कोई वजारत नहीं चाहते, इल्ला सिवाय एक चीज चाहते हैं, तो कुछ तो चाहते हैं, वो क्या है, मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, कि जो तुम में से चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बना ले। यानी किसी नबी ने भी कभी कोई अजर नहीं मांगा, बल्कि उनका अजर क्या था, इसका मतलब अजर तो था, लेकिन वो क्या था कि बस तुम अल्लाह के रास्ते की तरफ चल पड़ो, बस यही अजर है। जैसे अर्रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट आपसे कहता है कि हम आपसे कोई फीस नहीं मांगते सिवाय, क्या फिर इसका मतलब कुछ मांगते हैं सिवाय ये मांगते हैं कि आप अपना वक्त दे दें, आप तालीम हासिल करें, आप इस रास्ते पे लगे। तो यही बात नबी कहा करते थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम अल्लाह के रास्ते पर तो आ जाओ। इसी पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अफसोस करते थे, इतना गम करते थे कि लोग क्यों नहीं बात सुन रहे, क्यों नहीं इस रास्ते पर आ रहे, क्योंकि यही उनका मिशन था। एक और तफसीर भी की गई है वो इस चीज इस बात की कि मैं तुम्हारे लिए अपने तुम्हारे से अपने लिए कोई अजर नहीं मांगता, मगर अल्लाह के रास्ते के लिए, कि बना ले अपने रब की तरफ कोई रास्ता, यानी सदका व खैरात अल्लाह के रास्ते में देना, खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, तो ये मैं कहता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कई दफा तरगीब भी दी, कई दफा पे फरमाया कि आप दें अल्लाह के रास्ते में, तो ये भी सही है। व तवक्कल अल हय्य लजी ला यमूत व सब्बह बिहम्दिही, और तवक्कल करो, ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज है। ट्रस्ट क्या होता है कि इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, असबाब इख्तियार करे, लेकिन उसका दिल जो है ना, वो असबाब की तरफ ना देख रहा, उसका दिल ये कह रहा हो कि अल्लाह करना तू नहीं है, कर तो रही हूँ, ये जो कोशिश है ना ये मैं कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ये काम कराना तूने, क्योंकि हर कोशिश से तो कामयाबी नहीं मिल जाती। बहुत सारे लोग मसलन कोशिश करते हैं, बहुत बेहतरीन कारोबार खड़ा करते हैं, सब करते हैं, फेल हो जाता है। तो अल्लाह ताला मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मेहनत की, एक ताबिले इल्म ने रातों को पढ़ा, लेकिन उसके बाद इम्तिहान में बेटा फेल हो गया। तो बात ये कि तवक्कल अल्लाह के ऊपर हो, भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर हो कि मैंने सिर्फ असबाब इख्तियार करने हैं, बाकी तवक्कल मैं ट्रस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे कामयाबी दें। मेरा दिल अल्लाह की तरफ ही देखता रहे, अपनी कोशिशों की तरफ ना देखे, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी कोशिश की, ये नहीं। ये तवक्कल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में बैठे हैं, असबाब इख्तियार कर लिए हैं जितना कर सकते थे, कदमों के निशान मिटाने के भी इंतजाम कर लिए, छुप छुपा के भी आए, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी, फिर उसके बाद अब जितना कर सकते थे छुपे भी बैठे हुए, जो हो सकता था किया। अब इसके बाद सिर्फ तवक्कुल है कि अल्लाह ताला हम तेरे पर भरोसा है कि तू हमें अब इन काफिरों के हाथों में नहीं जाने देगा। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना अबू बकर सिद्दीक से कि आप क्या समझते हैं उसके बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो। तो तवक्कल अल हई, हई पे तवक्कल करो जो जिंदा हस्ती है और जिंदगी देने वाला है, खुद भी जिंदा है जिंदगी देने वाला है, उस पे भरोसा करो। इसलिए कि अगर इंसान किसी और पे भरोसा करता है ना, कि जो कायम ही ना हो, जिसके पास खुद जिंदगी ना हो, उसके ऊपर आज भरोसा किया कल को वो मर जाएगा तो क्या करेंगे। कोई अपनी औलाद पे भरोसा करके बैठ जाते हैं, ये औलाद ही है जिसने हमें पालना है, ये औलाद ही है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये औलाद ही है जिसके ऊपर हम बस तकिया किए हैं। क्यों, औलाद अगर चली जाए दुनिया से तो उसके बाद क्या है। तो अगर भरोसा करना है तो हई पे करें जो जिंदा हस्ती है, जिसको मौत नहीं, अल्लदी ला यमूत और वो सब्बेह बिहम्दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे उन हालात के अंदर ताकीद की जा रही कि आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला आपको यहाँ पे इनके हाथों में नहीं जाने दे, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्योंकि जो ये मिशन था ना बहुत बड़ा था, मुखालफतें बहुत ज्यादा थी, इस ऐसे वक्त में अल्लाह पे भरोसे के बगैर इंसान चल नहीं सकता। इंसान ये नहीं कह सकता फलां मेरे साथ हो तो फिर है, हाय मेरे साथ कोई साथी हो तो फिर, मैं तो अकेली हूं। अकेली नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखिए। जब अल्लाह के रास्ते के काम हो ना, या जिंदगी में वैसे भी हो, तो अल्लाह ताला पे भरोसा उसने ही करना है। वो जिंदा हस्ती है, उसको मौत नहीं। वह सब भी हमदी और उसकी तस्बीह बयान करें उसकी हमद के साथ। तस्बीह का मैंने पहले भी आपको बताया, पाकी बयान करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पाक है तो इसका मतलब है कि कोई उसको नापाकी नहीं लगी, नाउज़ु बिल्लाह, ये मतलब नहीं है। बल्कि पाकी बयान करने का मतलब है हर किस्म के नक्स से वो पाक है, यानी नक्स क्या होता है, कमी, हर किस्म की कमी से पाक है और हर किस्म के ऐब से पाक है। ऐब क्या होता है, कोई खामी, कोई फ्लॉ, तो कोई वीकनेस नहीं उसमें, कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं उसके अंदर। जब इंसान ये कह देता है तो इसका मतलब उसने क्या कहा कि उसमें खूबियां ही खूबियां, फिर ऐब नहीं है तो खूबियां, खामी तो कोई भी नहीं है, खराबी तो कोई भी नहीं, किसी किस्म की भी नहीं, मतलब है कि उसके अंदर परफेक्शन है। तो तस्बीह में ये भी शामिल है कि ना सिर्फ वो ऐब और कमी से पाक है बल्कि खूबियों का भी मालिक है, परफेक्शन भी है। तो अल्लाह ताला की पाकी बयान करें और उसकी हम्द के साथ, हम्द के साथ यानी हम्द शुक्र के माने, यानी वो तारीफ जो शुक्र के जज्बे के साथ की जाए। तो लिहाजा हम्द अल्लाह की जात के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती, इसलिए सब कुछ देने वाला तो वो ही है। वकफा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा, और अल्लाह ताला काफी है अपने बंदों की खबरगीरी रखने वाला, यानी जो उनके गुनाह है उनकी खबर लेने वाला रखने के लिए अल्लाह काफी है। कौन शर कर रहा है, कौन प्रोपोगंडा कर रहा है, कौन आपकी मुखालफतों के अंदर क्या कदम उठाने वाला है, अल्लाह ताला सब जानता है। आपको उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। तो हमें भी लोगों के गुनाहों के ऊपर नहीं ज्यादा हर वक्त नजर रखनी चाहिए, फलाने क्या कर रहे हैं और फलां क्या कर रहे हैं और आजकल क्या हो रहा है, ये बुराई हो रही है, अच्छा वो बुराई हो रही है, अच्छा तीसरी बुराई हो रही है, नहीं, अल्लाह काफी है ना।
अपने बंदों की खबर रखने के लिए उनके गुनाहों की, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम चेकलिस्ट रखें कौन इस वक्त क्या कर रहे हैं। हर वक्त हम बैठे यही गिनते रहे, उसने हिजाब करना छोड़ दिया, उसने नमाज पढ़नी छोड़ दी, उसने ये कलमा कुफर कह दिया, उसने फलाने ने ऐसे कर दिया, वो बेहया हो गया, उसने ये कर, क्यों? उनके जो भी गुनाह है वो अल्लाह ताला को पता है, वो बाखबर है। हमें गिनने की जरूरत है, हम अपनी फिक्र करें। अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, उसने आसमानों को बनाया और जमीन को बनाया और उनके दरमियान जो कुछ भी चीजें हैं उनको 6 दिनों में पैदा किया, किसी दिन पहाड़, किसी दिन दरख्त, किसी दिन ये कीड़े मकोड़े, किसी दिन नूर, किसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को तो जुमे के दिन पैदा किया। तो हर दिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की मखलूक को पैदा किया। सुम मस्तवाल अल अर्श, फिर मुस्तवी हुआ अर्श पर। कैसे मुस्तवी हुआ ये हम नहीं जानते और इसके ऊपर हमें अपनी जुबान भी नहीं खोलनी चाहिए। हम बस ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तवी है, जैसे इमाम मालिक ने फरमाया था ना कि कैफियत हम नहीं जानते, कैफियत के बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला मुस्तवी है, बस वो मुस्तवी है अर्श पे, बस दैट्स इट। अर रहमान, रहमान फसअल बिही, पूछो उसके बारे में वो कौन है, उसके बारे में पूछो खबीरा, खबर रखने वालों से। और खबर रखने वाले से सबसे पहले तो ये कि जो अल्लाह ताला अपने बारे में बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता। तो अल्लाह ताला अपने बारे में जो बताता है कुरान में वो ही सबसे ऑथेंटिक बात है। अल्लाह के बाद उसका रसूल सबसे ज्यादा रहमान के बारे में जानने वाला है, लिहाजा फिर रसूल बताता है। फिर रसूल के बाद जो अहले इल्म अल्लाह ताला की रहमान की मार्फत रखते हैं, उसको पहचानते हैं, वो बता सकते हैं। तो यानी अल्लाह ताला ने फरमाया वो कैसा है, वो रहमान कौन है, क्योंकि वो रहमान को नहीं मानते थे ना। रहमान कौन है ये पूछो खबर रखने वाले से, वो तुम्हें बताएगा। वइज़ा क़ीला लहुम, वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा गया उनसे उस जुदुल रहमान, सजदा करो रहमान को, कालू वमर रहमान, हमें तो नहीं पता रहमान कौन है, वो कौन है रहमान, वो क्या है रहमान। ये बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे, ये बात तहकीर के लिए। जैसे आपके सामने कोई कहे ना कि वो वजीर साहब, तो कोई कहे मैं नहीं जानता कौन वजीर, कौन वजीर, क्या है वजीर, ऐसे कहते हैं। तो यानी वो लोग अल्लाह ताला को की बात को हल्का करने के लिए, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कहते थे क्या रहमान, हमें नहीं रहमान का पता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आगे से फिर कहते हैं अनसजुदु लिमा तअमुरुना, क्या हम उसको ही सजदा करना शुरू कर दें जिसको तू हुक्म दे। जब उनसे कहा जाता है रहमान को सजदा करो तो कहते हैं क्या बस तुम कहोगे सजदा कर लो तो हम सजदा करना शुरू कर दें। कुफार ये कहते थे ना कि हम रहमान, हमें नहीं पता, अल्लाह का पता है हमें लेकिन हमें नहीं रहमान का पता। और उनको कहा गया रहमान को सजदा करो तो कहते हैं हम तुम्हारे कहने के ऊपर सजदा करना शुरू कर दें। जमाना जाहिलियत में कुफार जो है ना अल्लाह ताला को इस ना अल्लाह ताला का ये नाम नहीं जानते थे। सुलह हदैबिया के मौके पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया तो मुशरिकीन ने कहा हम रहमान और रहीम को हमें नहीं पता, आप बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखें बस। तो इस आयत में भी यही बताया गया है कि वो रहमान के नाम से भी चिढ़ते थे, वज़ादहुम नुफूर, और ज्यादा कर देती थी उनको नफरत, रहमान का नाम लेने से भड़कते थे, सजदा करने से गुरेज करते थे। तो ये भी आयते सजदा है, जहां जब हम इसकी तिलावत सुने तो फिर हम सजदा कर लें। और उम्मीद है कि आपको सजदे की दुआ आती होगी, कि आप वो दुआ नहीं अगर आती उसको याद कीजिए, सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु शक्क़ समाउ बसरु बिहौली व कुव्वती तबारक अल्लाहु अहसनुल ख़ालिकीन। तो अगर नहीं आती तो फिर आप सुभान रब्बी अल आला ही पढ़ सकते हैं। और जहां पे भी इंसान बैठा हो अगर नई जगह है कोई सजदा करने की तो वैसे ही झुक जाए, तो उनको रहमान के नाम से इतनी चिढ़ थी, हालांकि अल्लाह ताला का कितना प्यारा नाम, और सूरह रहमान पढ़े तो उसमें रहमान का तारुफ भी हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उससे पूछो जो बाखबर है, खबर रखने वाला है, तो अल्लाह ताला से ज्यादा कौन उसको जानने वाला है, इंसान का तो इल्म बहुत कलील है, तो रहमान की मार्फत उसके कलाम से हो सकती है, उसका कलाम पढ़ने, रसूल की बात से हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पहचानने वाले थे, तो इनके सामने जब रहमान का नाम लिया जाए तो ये इस तरह से कहते करते थे। और आप ये देखें कि इवन अल्लाह ताला के बारे में भी इनको सही तारुफ नहीं था, अल्लाह का नाम तो पता था लेकिन कहते थे कि नहीं अल्लाह ताला का नाम तो पता लेकिन कौन है तुम्हारे अल्लाह का हसब नसब किया है, तो सूरह इखलास नाजिल हुई थी। तो यहां से हमें पता चला कि रहमान के बारे में जानो पहले, अल्लाह ताला ने फरमाया ना उसके बारे में खबर रखने वाले से पूछो जानो, क्या हमें रहमान के बारे में पता है, उसकी पहचान है, क्या हम उसको जानते हैं, तो काफरों को कहा जा रहा है, लेकिन क्या मुसलमानों को भी आज तारुफ है रहमान का? क्योंकि अगर तारुफ नहीं है तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि फिर पूछ लो खबर रखने वालों से। अगर रसूल भी नहीं है तो उलमा है आज दुनिया में, उनसे इल्म ले। अगर अफसोस है कि आज मुसलमान खुद भी नहीं जानते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا